सिटी हॉस्पिटल, इमरजेंसी के बाहर। लाल बत्ती के ऊपर की हल्की हल्की झिलमिल अभी भी सबके दिलों की धड़कनें तेज कर रही थी। बाहर की ठंडी हवा भी उस घबराहट को नहीं रोक पा रही थी जो पूरे परिवार के चेहरों पर साफ लिखी थी। रत्ना देवी एक कुर्सी पर बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें लगातार उसी दरवाजे को देख रही थीं जहां से डॉक्टर अंदर गए थे। श्यामली तुरंत झुककर उनके पास बैठी। माँ, आप ऐसे घबराइए मत, डॉक्टर ने कहा है कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं। विश्वनाथ जी मजबूत हैं, ठीक हो जाएंगे। रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू भर गए। बेटा, मेरी जान अटकी हुई है, ये आधे घंटे जैसे साल बन गए हैं। श्यामली ने उनके हाथ पकड़कर दबाए। कुछ नहीं होगा, विश्वनाथ जी बहुत हिम्मती हैं, आप बस बैठिए, पानी लाकर दूं। हाँ हाँ बेटा, रत्ना देवी ने धीमे से कहा, जैसे किसी ने सहारा दे दिया हो। आर्यन थोड़ी दूर खड़ा था, आंखों में टेंशन, मुट्ठियां कसी हुई। वो खुद को संभाल भी रहा था और दादी को भी संभाल रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। श्यामली उसकी तरफ बढ़ी, आर्यन तुम ठीक हो? डरो मत, विश्वनाथ जी ठीक हो जाएंगे। आर्यन की आंखें लाल हो चुकी थीं। मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर पापा को कुछ हुआ ना? उसकी आवाज टूट गई। श्यामली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे मत सोचो, हम सब यहाँ हैं, बस हिम्मत रखो। वातावरण में बेचैनी घुली हुई थी। डॉक्टर बाहर आया, ऑपरेशन खत्म। करीब एक घंटे बाद सफेद कोट वाला डॉक्टर दरवाजे से बाहर आया। सब उसके चारों तरफ घिर गए। शकुंतला सबसे आगे। डॉक्टर, कैसा है मेरा भाई? डॉक्टर ने मास्क उतारा, चेहरे पर थकावट और गंभीर था। ऑपरेशन पूरा हो गया है, अभी उन्हें रिकवरी रूम में ले जाया जा रहा है। अब वो ठीक है? आर्यन ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा, अभी स्टेबल है, लेकिन 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, उन्हें होश आने में समय लगेगा। रत्ना देवी की राहत भरी सांस निकली, भगवान का लाख लाख शुक्र है। श्यामली ने खड़े होकर सबको पानी दिया, फिर पूछा, आप चाय लोगे? कुछ खा लो, पूरे दिन किसी ने कुछ नहीं खाया। शकुंतला ने घूर कर कहा, अभी खाने पीने की पड़ी है? मेरे भाई को खून में लतपत लाया गया है। श्यामली एक पल को रुक गई। मैं बस सबके लिए पूछ रही थी, किसी की तबीयत ना बिगड़ जाए। रत्ना देवी ने कहा, शकुंतला बहू, वो ठीक कह रही है, कभी कभी मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना पड़ता है। श्यामली हमारी बहू है, जिम्मेदारी उसका फर्ज है। शकुंतला चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों की चुभन साफ महसूस हुई। तभी विशाल आया, कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज। विशाल सांस फुलाए, थोड़ी हड़बड़ाई शक्ल में आया। शकुंतला ने उसे देखते ही दौड़कर पकड़ लिया। अरे भगवान का शुक्र है, तो ठीक है, मुझे लगा तू भी भैया के साथ कार में था, मेरे हाथ पांव सुन हो गए थे। विशाल ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं माँ, मैं तो उतर गया था, मेरे दोस्त को कुछ देना था, उसके घर जाना था, इसलिए बीच में उतर गया। मेरा फोन शायद नेटवर्क में नहीं था, इसलिए कॉल नहीं लगा। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, तुम ठीक हो, ये अच्छा है। तुम एक काम करो, रम्या को लेकर घर जाओ, यहाँ दादी, मैं और आर्यन हैं, हम सब हैं, तुम दोनों बच्चे हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। बस यही बात, और माहौल फिर तना। शकुंतला भड़क उठी, क्या मतलब, उसका मामा हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम इसे घर भेज रही हो, ये क्यों जाएगा घर? श्यामली थोड़ी घबराई, उसने धीरे कहा, मैं बस इसलिए बोल रही थी कि रम्या बहुत छोटी है, डर गई होगी, उसे घर ले जाना ठीक है। शकुंतला ने नाक से कोड़ी, इतने भी छोटे नहीं हैं ये दोनों, और जब तुम यहाँ रह सकती हो तो ये क्यों नहीं रह सकते? तुम सबकी उम्र में कौन सा इतना फर्क है? श्यामली थम गई, उसकी आवाज़ धीमी हो गई, मैं बस जिम्मेदारी के नाते कह रही थी, घर में भी कोई तो चाहिए। तभी रत्ना देवी ने बात को शांति से कट किया, शकुंतला बेटा, जो श्यामली कह रही है वो सही है, लेकिन ये भी याद रख, श्यामली विश्वनाथ की पत्नी है, ये यहीं रहेगी अपनी जगह पर, तू बच्चों को घर भेज दे, वहां भी कोई होना चाहिए। शकुंतला को जवाब नहीं मिला, उसने एक लंबी सांस ली, फिर अनमने ढंग से कहा, ठीक है, चलो दोनों। विशाल ने श्यामली को हल्की नजर से देखा, जैसे शुक्रिया भी था और जैसे कुछ छुपा भी रहा था। रम्या जो पीछे खड़ी थी रोती हुई उसकी बाजू पकड़कर बोली, मामी आप भी आ जाओ ना। श्यामली ने उसे सीने से लगाया, नहीं रम्या, मुझे विश्वनाथ जी के पास रहना है, तुम घर जाओ, मैं सुबह जरूर आऊंगी। रम्या और विशाल चले गए। दरवाजे की तरफ जाते हुए शकुंतला ने पलटकर श्यामली को देखा, वो नजर आरोप भी था, अविश्वास भी, और जैसे अंदर से कह रही हो, मेरे परिवार में मैं ही बड़ी हूँ, ज्यादा मत उड़ो। कोई बात नहीं कही, लेकिन उस एक नज़र ने बताने को सब कुछ कह दिया। श्यामली खामोश खड़ी रही। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, श्यामली यूं मत सोचना, ये सब वक्त की वजह से बोल रही हैं। श्यामली ने बस हल्की थकी मुस्कान दी, पता है, लेकिन ऐसे समय में सबको संभालना मुश्किल हो जाता है। वो रत्ना देवी के पास बैठ गई, उनके कंधे पर हाथ रखा, धीरे धीरे पानी पिलाया। हॉस्पिटल का कॉरिडोर अब शांत था, लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था, विशाल इतने सही वक्त पर बच कैसे गया, और उसका फोन सच में बंद था या उसने खुद किया था? एक रहस्य जो आने वाले वक्त में हवेली में तूफान बनकर फूटने वाला था। हॉस्पिटल की ठंडी कुर्सी पर बैठे बैठे श्यामली की उंगलियां बार बार आपस में फंस रही थीं। चेहरा शांत था पर दिल के अंदर मानो तूफान उठ रहा था। क्यों इतना डर लग रहा है, क्यों इतनी बेचैनी है, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। विश्वनाथ से उसका रिश्ता प्यार का नहीं था, मजबूरी का था, हालात का था। लेकिन आज उन्हें इस हालत में देखकर उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी थी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो, ये सोचते ही सांस रुकने लगी। उनकी आवाज, उनका शांत चेहरा, उनकी परवाह सब आंखों के सामने घूम गया। श्यामली ने खुद को छिड़का, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ अंदर ही अंदर। उसकी पलकों पर चुपचाप नमी तैराई। शायद मजबूरी के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं एक महीन सा धागा जुड़ ही जाता है, जिसे हम माने या ना माने लेकिन दिल मान चुका होता है। श्यामली ने अपनी आंखें पोछी और धीरे से बोली, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आपको तो ठीक होना ही है।